ओम ओम ओम। विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण के अंतर्गत 57वां श्लोक 57 वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवाद् भवेत्। यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा भगवान्निममेवार्थम् अर्जुनाय निरूपयेत् अनादाविह संसारे संचितः कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते धर्ममेघमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमा वर्षत्ते सयतो धर्मा मृतधारः सहस्रशः। अमुना वासना जाले निःशेषं प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। तो बता रहे थे श्रवण मनन और निदिध्यासन। महावाक्यों का गुरु के मुख से पद पदार्थ विभाजन पूर्वक वाक्यार्थ को सुनना इसको श्रवण कहते हैं। सुने हुए वाक्यार्थ के बारे में युक्ति आदि का प्रयोग करके शंका आदि उपस्थित होते हों तो उनका समाधान करते हुए शास्त्र प्रतिपादित तत्व में दृढ़ होना मनन कहते हैं। श्रवण और मनन के द्वारा जो अर्थ निश्चय हो गया है उस निश्चय से जरा भी विचलित न होना इसको निदिध्यासन कहते हैं। श्रवण में वृत्तियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, मनन में भी वृत्तियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। निदिध्यासन में वृत्ति सिर्फ तीन प्रकार की होती है, वस्तु केवल तीन रहते हैं निदिध्यासन में, ध्याता ध्यान और ध्येय त्रिपुटी रहती है। निदिध्यासन परिपक्व हुआ दृढ़ हुआ तब समाधि उपलब्ध होता है। एक क्रम से ही है। समाधि की अवस्था कैसी होती है तो बताया, ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, त्रिपुटी में से द्विपुटी वह गायब हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ध्यान करने वाला और ध्यान की क्रिया, ये क्रमशः दोनों ध्येय के साथ मिल जाते हैं। ध्येय एक गोचरा, वहां तुम्हारा जो ध्येय था, लक्ष्य था, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बचता। ध्येय मात्र था ये पता कैसे चले महाराज? वहां तो ध्यान क्रिया नहीं है, ध्याता नहीं है, तो वृत्ति नहीं है। जब वृत्ति नहीं है तो फिर ध्यान हुआ ये कैसे पता चले? तो उसको विद्यारण्य मुनि जी ने जवाब दिया, वृत्ति नहीं रहती ये बात नहीं, समाधि की अवस्था में वृत्ति नहीं रहती ये बात नहीं, वृत्ति रहती है, लेकिन वह वृत्ति अज्ञात रूप में रहती है। वस्तु नहीं रहता ये बात नहीं, वस्तु रहता है, अज्ञात रूप में रहता है। जैसे तुम गहरे निद्रा में चले जाते हो, सुसुप्ति में, तुम्हारे सुसुप्ति में जाने के बाद संसार नहीं रहता ये बात नहीं, संसार रहता है, लेकिन ये जो संसार है, तुम जब तक सुसुप्ति में रहोगे तुम्हारे ज्ञात के रूप में नहीं रहेगा, अज्ञात के रूप में रहेगा। ज्ञात के रूप में रहना ये अलग चीज है, अज्ञात के रूप में रहना अलग चीज है। अभी संसार रह रहा है, अभी संसार भी रह रहा है, उसका ज्ञात भी हो रहा है। सुसुप्ति में संसार रहता है, लेकिन संसार रहने का ज्ञात तुम्हें नहीं होता, संसार रहने का तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ तो इसका मतलब संसार नहीं रहता कि नहीं कहना? रहता है। किस रूप में रहता है? अज्ञात रूप से रहता है। इसी तरह अभी तुम्हारी चित्त की वृत्ति है वह ज्ञात रूप में है, समाधि अवस्था में जो चित्त की वृत्ति रहती है उस समय अज्ञात रूप में रहती है। तो कैसे सिद्ध कर रहे हो कि जब वृत्ति का ज्ञात नहीं रहता है, अज्ञात रूप में रहता है, किस आधार से कहते हो? उसके लिए अनुमान बताया भाई, अनुमान द्वारा सिद्ध होता है कि उस समय भी वृत्ति रहती है, अज्ञात रूप में रहती है। स्मरणात् अनुमीयन्ते, वित्थितस्य समुत्थितात्, समाधि से अच्छी तरह जगा हुआ व्यक्ति समाधि का स्मरण करता है। क्या करता है? समाधि से अच्छी तरह जगा हुआ व्यक्ति, यानी समाधि से बाहर आया हुआ व्यक्ति, वह किसका स्मरण करता है? समाधि का स्मरण करता है। और यदि वहां वृत्ति न रही होती तो फिर स्मरण कैसे करेगा वो? वृत्ति थी, उस वृत्ति से समाधि का अनुभव किया और तब जागृत में उसको स्मृति हुई। अनुमान यह है कि यद्यत स्मर्यते तत्त अनुभूयतम अनुभूतम, जहां भी जिसको भी जब भी जो स्मरण होता है, स्मृति होती है, वो स्मृति अनुभव पूर्विका होती है। स्मरण से पहले उसका अनुभव हुआ हुआ होना चाहिए। अब समाधि का स्मरण करता है जगने के बाद, तो इसका मतलब समाधि का अनुभव उसको हुआ। किस साधन से अनुभव हुआ? तो बोले अनुभव के लिए तो वृत्ति चाहिए, वृत्ति के बिना फिर अनुभव होगा नहीं। वृत्ति तो तुमने कहा कि नहीं, वो तो त्रिपुटी नहीं रहता है, ध्याता और ध्यान वृत्ति दोनों ही ध्येय रूप में परिणत हो जाता है। तो वृत्ति तो थी नहीं, तो कैसे अनुभव हुआ? बोले वृत्ति थी लेकिन वो अज्ञात थी। हमने कल ये बात को एक दो उदाहरण से तुम्हें समझा दिया था। अभी तुम अपने घड़ी हाथ में बंधे हो तो घड़ी चलने का तुम्हें भान है, तो वो घड़ी तुम्हारे ज्ञात तत्व न चल रही है, तुम्हारे जानते हुए ज्ञान में चल रही है। और तुम गहरे निधि में चले जाते हो तो घड़ी बंद हो जाती है क्या? घड़ी चलती रहती है। रात को घड़ी बंद नहीं हुई, घड़ी चलती रही, ये तुम्हें कैसे निश्चय होगा? तुम तो गहरे निद्रा में सोए हुए थे। तुम गहरे निद्रा में सोने पर भी जब सुबह जगते हो तो घड़ी के सुई दूसरे अंकों में पहुंच चुका होता है। तो तुम ये समझते हैं कि घड़ी चलती रही, तो अज्ञातत्व न चलती रही। अभी ज्ञातत्व न चल रही है, उस समय अज्ञातत्व न चलती थी। जागृत सपना और ध्यान में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ध्यान, ये चारों अवस्था में त्रिपुटी रहता है। लेकिन समाधि में त्रिपुटी नहीं रहता। उस बात को अब ये श्लोक के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। ननु इदानीं वृत्ति उत्पादक प्रयत्न अभावात् कथम वृत्ति अनुवृत्ति रित्या संख्य। वृत्ति को उत्पादन करने वाला, ध्यान देना है यहां क्या कहने जा रहे हैं। वृत्ति को उत्पादन करने वाला उत्पादक होना चाहिए, तभी वह वृत्ति का उत्पादन करता रहेगा। अब त्रिपुटी नहीं है तो उत्पादक भी नहीं है, समझे? ध्याता नहीं है, त्रिपुटी नहीं है तो ध्याता नहीं है। ध्याता नहीं है का मतलब हुआ वृत्ति उत्पादक नहीं है। वृत्ति को बनाने वाला कौन है? वह है। अभी तो तुम हो, तुम्हारे संकल्पों से वृत्ति चल रही है, एक से पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, वृत्ति उत्पन्न होती जा रही है। अब उसमें समाधि में तो वृत्ति उत्पादन करने वाला ध्याता नहीं है, तो अज्ञात वृत्ति कैसे चलेगी? अनुवृत्तियां, ये अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का मतलब एक बार वृत्ति को उत्पन्न किया, फिर वह वृत्ति दोबारे चले, फिर तीसरी बार चले, फिर चौथी बार चले, फिर पांचवीं बार चले, उसको अनुवृत्ति कहते हैं। निरंतरता, निरंतरता को क्या बोलते हैं? अनुवृत्ति। वृत्ति माने स्टार्ट, अनुवृत्ति माने वो लगातार। सबसे पहले तुमने पांव चलाई तो वो तो तुम्हारे संकल्प से स्टार्ट हुआ ना। अब तुम शरीर में बैठे रहोगे तो पांव चलता ही रहेगा, अनुवृत्ति होगा, आगे का पीछे जाएगा, पीछे का फिर आगे जाएगा, आगे का पीछे जाएगा, पीछे का आगे जाएगा। तो मरे हुए के पांव चलते हैं, क्योंकि उत्पादक नहीं है, वृत्ति उत्पादक नहीं है ना, तो वृत्ति कहां से बनेगी? सुषुप्ति अवस्था में, माने समाधि अवस्था में वृत्ति उत्पादक नहीं है तो अनुवृत्ति कहां से बनेगा, कैसे बनेगा? ये पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है। उसका उत्तर विद्यारण्य मुनि जी दे रहे हैं, गहरा विषय है। वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि, तीन कारणों से अनुवृत्ति होते रहते हैं। यूं समझ लो चार कारणों से अनुवृत्ति होती है। पहला कारण तो वृत्ति उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हो तो अनुवृत्ति होता ही रहेगा। वृत्ति उत्पादक हो तो वृत्ति अनुवृत्ति उत्पन्न होता ही रहेगा। दूसरा कारण बता दिया, प्रथमात् प्रयत्नात्, प्रथम जो वेग से जो प्रयत्न किया गया उस प्रयत्न के अवरुद्ध हो जाने पर भी अनुवृत्ति चलती है, समझे नहीं? प्रयत्नात् प्रथमाद् अपि अनुवृत्ति संजायते, पहले के जो वेग है उस वेग से वेगो उत्पादक से हट जाने के बाद भी अनुवृत्ति चलती है। गहरा विषय है, और दृष्टांत आदि देंगे तभी ये वाक्य का अर्थ समझ में आएगा तुम्हें। दूसरा, असकृत अभ्यास, बार बार का प्रयत्न और अभ्यास है, उस अभ्यास के चलते भी प्रयत्न करने वाला न होने पर भी वह अनुवृत्ति चलता ही रहता है। उसका कारण दिया, असकृत अभ्यास, ये भी अनुवृत्ति में हेतु है। दूसरा, तीसरा, अदृष्ट असकृत अभ्यास, तीसरा है अदृष्ट, अदृष्ट के चलते भी अनुवृत्ति उत्पन्न होती रहती है। अदृष्ट माने पूर्व जन्म का कर्म, क्यों? क्योंकि यह समाधि का प्रसंग है, समाधि में अनुवृत्ति चलाना है, और समाधि में अनुवृत्ति चलाने वाला जो है वृत्ति है माने अदृष्ट है, वो अशुभ अदृष्ट तो नहीं होगा, इसलिए वो शुभ अदृष्ट ही होगा। पूर्व जन्म का जो पुण्य है जो कि अदृष्ट बनकर सामने आया, और वो अदृष्ट वृत्ति उत्पादक के हट जाने पर भी वो अदृष्ट आगे उस वृत्ति को अनुवृत्ति के रूप में चलाता रहेगा। बड़ा गंभीर विषय है, ये आराम से समझ में आने वाला नहीं है। चौथी बात, प्रथम प्रयत्न से अनुवृत्ति, पहली बात। दूसरी बात, अदृष्ट से अनुवृत्ति। तीसरी बात, असकृत अभ्यास से अनुवृत्ति। चौथी बात, संस्कारात अनुवृत्ति। सचिव माने सहयोग, सचिव का अर्थ होता है सहयोगी, मुख्य व्यक्ति, काम करने वाला जो मुख्य व्यक्ति है उसको सहयोग पुराने वाले को सचिव कहते हैं। मंत्री को कोई सचिव कहता है? सचिव को अंग्रेजी में आप लोग क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी। समझे कि नहीं? मुख्य व्यक्ति कौन है? उस विभाग का मुख्य व्यक्ति तो मंत्री हो गया। अब उस मंत्री को सहयोग पुराने पहुंचाने वाले जो होंगे उनको सचिव कहेंगे। मंत्री या तो अपने आप काम करेगा, खुद ही काम करेगा, और सब काम खुद ही नहीं कर सकता, इसीलिए उस काम को करने के लिए वह दो चार सहयोगी रखता है, और दो चार जो सहयोगी रखेगा वह उसके अनुपस्थिति में भी काम करते रहेंगे। करेंगे कि नहीं? आपका क्लर्क आपके अनुपस्थिति में आपके ऑफिस का काम करता है कि नहीं? और क्लर्क नहीं होगा तो आप तो कर लोगे, आप यदि हैं क्लर्क नहीं तो आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि मेन व्यक्ति तो आप हैं ना। आपको काम करने में मदद पहुंचाने वाले आपका सेक्रेटरी, आपका सचिव। इसी तरह अंतकरण की जो वृत्ति है उस वृत्ति को चलाने वाला जो मेन व्यक्ति है कौन है? बोलो, तुम्हारे अंतकरण को वृत्ति के रूप में चलाने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है? तुम खुद हो, तो तुम तो मालिक हो गए, तुम ही इसमें रहोगे तो तुम्हारे रहने पर वृत्ति चलती रही। अब कदाचित तुम छुट्टी में चले गए, ये समाधि तुम्हारे छुट्टी में जाने की घटना है, समझे कि नहीं? समाधि क्या है? समाधि क्या है बोलो ना? तुम्हारे छुट्टी में जाने के प्रसंग है, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि तुम छुट्टी में चले गए तो और भी काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मृत्यु में और समाधि में ये फर्क है। मृत्यु में तुम चले गए तो और भी चले जाएंगे, तुम चले गए तो न तो अंतकरण रहेगा न वृत्ति बनेगी, न वृत्ति बनेगी न कुछ वाहन होगा, तुम चले गए। लेकिन समाधि में तुम चले नहीं जाते हो, लेकिन तुम आराम करते हो, छुट्टी करते हो। शरीर से निकल के तो जाते नहीं हो, तुम रहते तो यहीं हो। तो तुम्हारे जो सचिव हैं, वृत्ति बनाने वाले, चार के मदद से वो वृत्ति तुम्हारे प्रयत्न न करने पर भी वो वृत्ति चलती रहती है। कौन है वो चार? एक तो तुम्हारा सबसे पहले का जो प्रयत्न है वह अनुवृत्ति में हेतु है। दूसरा है अदृष्ट, पूर्व पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, शुभ कर्म, वह भी समाधि में अनुवृत्ति चलाने में हेतु है। तीसरा है असकृत अभ्यास, बार बार का जो पहले का अभ्यास, क्योंकि तुम्हारे बार बार प्रयत्न से समाधि में वृत्ति पहुंची है, एक ही झटके से समाधि में नहीं पहुंची है वृत्ति, बाहर से हटाते जाना पड़ा, कितनी बार कितने प्रयत्न कर से तब वृत्ति समाधि में पहुंची है। तो वो जो अभ्यास है वो अभ्यास भी तुम्हारे अनुवृत्ति के लिए कारण है। चौथा है संस्कार, इन चार के योग से अनुवृत्ति होता रहता है। वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। जैसे पंखा को पहली बार घुमाने के लिए कारण बिजली है, समझे नहीं? बिजली और पंखा जो यंत्र है उसका तुमने संबंध कर दिया, स्विच ऑन कर ली तो संबंध हो गया। संबंध होते ही बिजली माने पंखे को स्टार्ट किया और घुमाया, घूमने में कारण बन गया बिजली। अब वो घूमता ही रहा। तो क्या हुआ? वो असकृत अभ्यास, बिजली ने उस पंखा को क्या करा? बार बार घुमाया। बार बार घुमाने का मतलब असकृत अभ्यास, बार बार का अभ्यास, घूमने का अभ्यास पंखा का। बिजली ने घुमाया, पंखा घूमता ही रहा, तो घूमने का अभ्यास हुआ और फट से तुमने स्विच ऑफ कर दी। अब करते ही बिजली का और पंखे का संबंध विच्छेद हो गया। अब घुमाने वाला जो तत्व था बिजली, वो तो हट गया, तो फिर पंखा कैसे चला? जैसे ऑफ किया वैसे फट से पंखा रुक जाना चाहिए। तो बिजली की अनुपस्थिति में भी पंखा क्यों चला? तो उसका उत्तर क्या होगा? असकृत अभ्यास, बार बार चलने घूमने का जो अभ्यास था उसके वेग से वो पंखा चलता ही रहा। दूसरी बात, संस्कारात, पहले चलने का जो संस्कार था वो संस्कार की वजह से अपने आप चलता रहा। लेकिन वह नैरंतर्य और नित्य तो है ही नहीं, बिजली की अनुपस्थिति में भी जो पंखा चल पड़ा वह नित्य तो है ही नहीं, दीर्घ काल तक तो चलेगा नहीं वो पंखा। कब तक चलेगा? जब तक उसका वेग रहेगा तब तक चलेगा, या जब तक उसका संस्कार रहेगा तब तक चलेगा? उसके बाद धीरे धीरे उसका वेग कम होता जाएगा और एक दिन पंखा रुक जाएगा। अब क्यों नहीं चल रहा है? तो बोले चलाने वाला बिजली का संबंध नहीं है इसलिए नहीं चल रहा है। तो समाधि क्या है बोलो? समाधि नित्य सुख की अवस्था नहीं है। समाधि क्या है? नित्य सुख की अवस्था, आनंद की अवस्था नहीं है, अनित्य है। तुम्हारे समाधि का जो पहले का संकल्प है, समाधि का जो प्रयत्न है, जो समाधि के लिए अदृष्ट पुण्य आदि हैं, वो सब के सहयोग से समाधि का समय निर्धारित होता है और इसके हटते ही समाधि स्वतः हट जाएगा, इसलिए समाधि स्थायी नहीं है। हाँ, ये बात ये 57वें श्लोक के द्वारा विद्यारण्य मुनि जी समझा रहे हैं। विषय बड़ा गंभीर है। वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। कैसा अदृष्ट है महाराज? तो अदृष्ट माने शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, इन तीन प्रकार के कर्म होते हैं और तीन प्रकार के कर्मों का तीन प्रकार का ही अदृष्ट होंगे। समझे कि नहीं? शुक्ल कर्म माने सत्कर्म पुण्य कर्म, उसका अदृष्ट भी सत्कर्म ही होगा। कृष्ण कर्म माने निषिद्ध कर्म पाप कर्म, उसका जो अदृष्ट होगा तो भी पापात्मक ही होगा, दुखात्मक होगा। और शुक्ल कृष्ण मिश्रित, जैसे हम लोगों का, हम लोगों के तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक पुण्य कर्म, दूसरा पाप कर्म, तीसरा मिश्र कर्म, पाप पुण्य मिले हुए। अब देवता लोग जो हैं वह पुण्य कर्म के फल भोगी होकर स्वर्ग चले गए, असुर लोग पाप कर्म के फल भोगी होकर पाताल चले गए। तुम हम मनुष्य लोग पुण्य और पाप दोनों कर्मों के भोक्ता बनकर यहां बैठे हुए हैं, इसलिए हम कभी दुखी भी होते कभी सुखी भी होते। हमको सुख दुख बराबर भोगना पड़ता है। पार्ले का बिस्किट 50-50, पार्ले का बिस्किट 50-50। एक बिस्किट हमारे हाथ में आया, एक माताजी बिस्किट लाके दी, उसमें लिखा था 50-50। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोले महाराज ये 50-50। तो हमने कहा आधा तुम खाओ आधा हम खाते हैं 50-50। बोले नहीं नहीं महाराज आप सब खाओ, आपके लिए है। बोले ये 50-50 फिर क्या है? आधा दूसरों को खाओ आधा खुद खाओ, ये अर्थ नहीं है महाराज। क्या अर्थ है? बोले आधा चीनी का स्वाद आधा नमक का स्वाद, बस वही 50-50 का अर्थ वो है, आधा चीनी का स्वाद आधा नमक का स्वाद, तो 50-50। ऐसे ये मनुष्य पार्ले का 50-50 बिस्किट है। ये मनुष्य आधा पाप कर्म का फल दुख का अनुभव करे और आधा पुण्य कर्म का फल सुख का भी अनुभव करे, 50-50 बराबर। लेकिन योगियों का जो कर्म होता है वह न पुण्यात्मक होता है, न पापात्मक होता है, न मिश्रात्मक होता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र ही रचना कर दी है, कर्म अशुक्ल कृष्णम योगी न। योगियों का कर्म न शुक्ल होता है, न कृष्ण होता है, न मिश्र होता है, त्रिविधम इतरेषा। और जो योगी नहीं है उन लोगों का कर्म त्रिविध होगा। इतरेषा कर्म त्रिविधम, योगी नाम कर्म न शुक्लम न कृष्णम। वो जो कर्म है योगियों के, उस कर्म के प्रभाव से वो अनुवृत्ति चलता ही रहता है, समझे कि नहीं। हाँ, योगियों का जो अशुक्ल अकृष्ण अमिश्र जो कर्म है, उन कर्मों के अदृष्ट से तभी समाधि लाभ मिलेगा योगी को, समझे कि नहीं। कृष्ण कर्म के अदृष्ट से दुख भोगना पड़ेगा, शुक्ल कर्म के अदृष्ट से सुख भोगना पड़ेगा, मिश्र कर्म के अदृष्ट से सुख दुख भोगना पड़ेगा, समाधि तो नहीं मिलेगा। समाधि मिलेगा अकृष्ण अशुक्ल अमिश्र योगियों का जो कर्म, उस कर्म के अदृष्ट से अनुवृत्ति चलती रहेगी। तब वहां ध्याता भी देह रूप होने के बाद भी ध्यान जो वृत्ति है उसकी वृत्ति भी खत्म हो गई, लेकिन अनुवृत्ति चलती रहेगी। वृत्ति खत्म होना और अनुवृत्ति चलना, ये दो चीज अलग अलग है। वृत्ति और अनुवृत्ति दो अलग अलग है, समझे कि नहीं। हाँ, गमन और अनुगमन ये अलग अलग चीज है। गमन गमन के लिए स्वयं ही सावधानी पूर्वक दिग देशांतर आदि का पूरा जानकारी पूर्वक गमन करना पड़ेगा। अनुगमन तो अंधा भी कर लेगा नहीं। अंधा जो करता है वो क्या करता है, अंधा जो पीछे से वो चलता है और लकड़ी पकड़ता है ना, हाथ पकड़ता है, कपड़ा पकड़ता है, वो आगे वाले का अनुगमन करता है। आगे वाला रुक गया, वो रुक गया, आगे वाला चला तो वो भी चला, उसको कहते हैं अनुगमन। जैसे ट्रेन के डब्बे, इंजन गमन करता है और ट्रेन के डब्बे अनुगमन करते हैं। ट्रेन के डब्बे को चलने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या? इंजन के जो प्रयत्न है वही प्रयत्न डब्बों के लिए चलने के लिए पर्याप्त है, डब्बों का अपना कोई प्रयत्न नहीं है। इसी प्रकार से पहले वृत्ति हुई इंजन की तरह, अनुवृत्ति हुई डब्बों की तरह, बस। ये दृष्टांत अनेक हैं, इसे समझ में आ जाए आपको, इसलिए हम दृष्टांत दिया करते हैं। वृत्ति नाम अनुवृत्ति, अब सब मिलाकर इतने अर्थ आप समझ लेना। गहरी निद्रा में भी वृत्ति रहती है, समझ में आई कि नहीं। वृत्ति बिल्कुल खत्म नहीं होता है, त्रिपुटी रहता है, वृत्ति रहती है, लेकिन वह वृत्ति अज्ञात वृत्ति रहती है। इसी तरह ध्यान की अवस्था में भी वृत्ति रहती है, इसी तरह ध्यान और सुषुप्ति में अंतर क्या है? बोले ध्यान में वृत्ति ज्ञात वृत्ति है, ध्याता को वृत्ति का ज्ञात रहेगा, सुषुप्ति में सोने वाले को वृत्ति का ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए अज्ञात वृत्ति। ध्यान में ज्ञात वृत्ति, समाधि में पुनः अज्ञात वृत्ति। तब समाधि में और सुषुप्ति में फिर अंतर क्या हुआ महाराज? दोनों में वृत्ति अज्ञात है। तो बोले समाधि में ज्ञाता और वृत्ति का दोनों ध्येय रूप हो जाएंगे, सुषुप्ति में सोने वाला और अज्ञात वृत्ति ध्येय रूप नहीं होगा, ये फर्क है। ननु अयम समाधि पूर्वाचार्येर न निरूपितो, ऐसी समाधि की बात तो पहले के आचार्यों ने कोई चर्चा ही नहीं की है, तुमने अचानक ऐसी समाधि की चर्चा कहां से कर ली? विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं कि हम अपने मन की बात कभी भी नहीं करते, नरेंद्र मोदी जिस तरह करते हैं। हम तो पूर्वाचार्यों की बात करते हैं। बोले हम अपनी मर्जी से कोई व्याख्या नहीं करते। पूर्व के आचार्यों ने ही व्याख्या की है, इसलिए हमने की है। पूर्वाचार्य कौन है? अरे भाई, सबसे बड़े आचार्य तो सब पूर्वे साम गुरु काले नानवच्छेदात है, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा ये गीता के छठे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को जब योग की बात कही तो वहां समाधि की चर्चा की, और उस समय इस तरह उन्होंने कहा था, वही बात हम यहां कह रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थ इत्यादि विरने कदा निंगते सोपमा स्मृत। श्लोक आगे ये है पूरा। यथा हे अर्जुन, जिस तरह निवात दीप निवातस्थ बात रहित देशे स्थ दीप वायु रहित स्थान में जलता हुआ दीपक। अब ये विरोधाभासी शब्द है, वायु रहित जगह में दीपक तो जल ही नहीं सकता, लेकिन भगवान ने कह दिया जिस तरह वायु रहित स्थान में जलता हुआ दीपक, क्योंकि वायु दीपक के लिए प्राण है। जैसे प्राण न हो तो आप जिंदे नहीं रहेंगे, जिस तरह वायु न हो तो दीपक जल ही नहीं सकता। दीपक के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन वायु है, वायु न हो तो दीपक नहीं जलेगा। तो बात रहित वायु रहित का अर्थात दीपक को हिलाने वाला वायु नहीं, चलायमान वायु नहीं, स्थिर वायु है, चलायमान वायु नहीं है, समझे? नहीं, स्थिर वायु होने से क्या हुआ कि दीपक को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और चलायमान वायु न होने से दीपक चंचल नहीं रहेगा। ये था दीपो निवारतस्ता न इंगते, जस्ते वायु रहित स्थान में जलता हुआ दिया ज्योति, उसकी जो लो है वो न इंगते, हिलेगा नहीं। इत्यादि भी अनेकता अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इमम एव अर्थम अर्जुनाय निरूपयत, यही अर्थ अर्जुन के लिए भगवान ने समझाया, वही बात हमने यहां कही है। इससे फायदा क्या होगा महाराज इस समाधि से? अब फायदा सुन लो भाई, वेदांत तो सुनकर फायदा क्या होगा, महावाक्य सुनकर फायदा क्या होगा, ब्रह्म विद्या सुनकर फायदा क्या होगा, उपनिषद सुनकर फायदा क्या होगा? अरे व्यापारियों, फायदा खोजते रहते हो, ये फायदा सुन लो अब यहां। अनादो यह संसारे संचिता कर्म कोटय अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्म विवर्धते। अनादिकाल से चलता आया हुआ ये जो संसार है, इस अनादिकालिक प्रवाह के रूप में चलने वाले संसार में तुम भी अनादिकाल से यात्रा कर रहे हो, और तुम ने अनादिकाल से अनेक प्रकार के कर्म किए हैं, और तुम्हारे जो अनादिकाल से किए हुए कर्म, जब कर्म किया उसी समय में खत्म नहीं किया तुमने, कर्म बचते गए। तुम्हारी कमाई जितना तुम कमाते हो वो सब रोज का रोज महीने के महीने खर्च करके खत्म कर दिया होता तो बैंक बैलेंस होता तुम्हारे पास? बोलो, अमेरिका में ऐसे करते हैं वो, अमेरिका यूरोप में कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं वो लोग, काम करे 7 दिन में उनको सैलरी मिलती है, हर 7 दिन में सैलरी मिलती है उनको कर्मचारियों को, ऐसा नहीं कि महीने के बाद सैलरी मिले। तो 7 दिन में सैलरी मिली, शुक्रवार को उनको सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलती है, शनिवार और रविवार 2 दिन खूब उड़ाते हैं, खूब मौज करते हैं, होटल में जाओ खाओ पियो मौज करो, और सोमवार से शनिवार माने शुक्रवार तक वह क्रेडिट में जीते हैं, उधारी करते हैं वो लोग, और शुक्रवार को तनख्वाह मिला तो वो पहले का 5 दिन का उधार भी चुकता कर दिया और बाकी 2 दिन फिर खाए पिया मौज कर ली, फिर सोमवार से काम शुरू किया तो फिर वो उधारी में चलेगा, सोमवार से शुक्रवार तक उधारी, शनिवार और रविवार नगद। हाँ, वहां का सिस्टम, हम तो कई बार गए हैं ना, सब अनुभव कर रहे हैं, वहां की लाइफ यही है, सोमवार से शुक्रवार तक उधारी, शनिवार और रविवार नगद, सोमवार से शुक्रवार उधारी, कोई बैंक में पैसा नहीं रखता। क्यों रखे पैसा? क्योंकि वहां की सरकारी नीति यह है, रिटायर होने के बाद, सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद मेडिकल सरकार फ्री देता है, ट्रांसपोर्टेशन सरकार फ्री देता है, बोलो कहीं जाना आना पड़ा यातायात सरकार फ्री, औषधि खाना हो रोग इलाज उपचार करना हो तो फ्री, रहना हो तो वह करना हो तो सरकार भत्ता देता है, बोलो पैसा, पेंशन, वृद्ध भत्ता है, ये पत्ता है, पेंशन है, ले सीनियर सिटीजन केयर होम है, सब कोई करता। बैंक में क्यों रखना महाराज? हमने कहा वो ठीक रहा, वो सिस्टम तो वही होना चाहिए, और हम लोग तो करते क्या हैं, हमारे लिए पूर्ता हो तो भी हमारे बच्चे का क्या होगा, बच्चे का पूरा हुआ तो उसके बच्चे का क्या होगा, हम इसीलिए जो कमाई करते हैं उसका ठीक उपयोग भी नहीं कर पाते, मोह के चलते ऐसा होता है। हो यहां देख लो, अब बता रहे हैं, ध्यान देना, अनादौ इह संसारे संचिता कर्म कोटयः, तुमने करोड़ों करोड़ों कर्म करके, अनगिनत कर्म करके जो कर्म संचय करके रखा है, यानी तुम्हारा जो संचित कर्म हुआ है, अनेन विलयम यान्ति, इस वेदांत श्रवण से और इस समाधि के अभ्यास से, समझे कि नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान और समाधि, 5 अंग हो गए कि नहीं, श्रवण 1 अंग, मनन 2 अंग, निधिध्यासन 3 अंग, ध्यान 4 अंग, समाधि 5वां अंग। इस समाधि का फल क्या होगा? तो बोले तुमने जितना भी कर्म संचित करके रखा है, सारा संचित कर्म विलयम यान्ति, फल दिए बिना नष्ट हो जाएंगे, फल देंगे नहीं वो, नष्ट हो जाएंगे। शुद्धो धर्म विवर्धते, उल्टा शुद्ध धर्म की अभिवृद्धि होगी, वो धर्म यानी अखंडाकार वृत्ति, वेदांत के भाषा में, या धर्म माने पुण्य पाप वाला धर्म नहीं है, शुद्ध अखंडाकार जो वृत्ति है उस अखंडाकार वृत्ति की उपलब्धि होगी। और आगे क्या कहते हैं कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।